एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
संदेश तेरा, झरने गाए शांति का संदेश तेरा, धन्य है पवित्र है नाम यीशु तेरा, तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीऊं यीशु परमेश्वर, तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीऊं यीशु परमेश्वर, जिंदगी की राह में साथ है तेरा, जिंदगी की राह में साथ है तेरा, तेरे बिन दिखे मुझे घोर अंधेरा, तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीऊं यीशु परमेश्वर, तू मेरा प्रभु है, तू है ईश्वर, तेरे लिए जीऊं यीशु परमेश्वर।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमें तेरा वचन के द्वारा आशीषित कर। जब हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता, हमारे मनों को खोल दे और तेरा पवित्र आत्मा दे। विशेषकर मैं मेरे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, उनके मनों में तू काम कर और उन्हें तू तेरा वचन के द्वारा आशीषित कर। मेरे संग हो पिता, तेरा आत्मा दे ताकि मैं तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तेरे वचनों को बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है, क्या परमेश्वर अपने लोगों का पलटा ना लेगा। हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों से फिर सीखने जा रहे हैं। यह दृष्टांत जो यीशु मसीह ने कहा वह लूका 18 का 1-8 में पाया जाता है। यहाँ क्या परमेश्वर अपने लोगों का पलटा ना लेगा के विषय में कहा गया है। मसीह अपने दूसरे आगमन से ठीक पहले की अवधि के बारे में बात कर रहे थे और उन खतरों के बारे में जिनसे उनके अनुयायियों को गुजरना होगा। उस समय के विशेष संदर्भ में उन्होंने दृष्टांत बताया, इस उद्देश्य से कि मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। उसने कहा, एक नगर में एक न्यायी था जो ना तो परमेश्वर से डरता था ना किसी मनुष्य की परवाह करता था, और उसी नगर में एक विधवा भी थी और वह उसके पास आकर कहती थी, मेरे मुद्दे से मेरा पलटा ले। पर उसने कुछ समय तक तो ऐसा करना ना चाहा, परंतु बाद में अपने मन में सोचा, यद्यपि मैं परमेश्वर से नहीं डरता और न किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ, फिर भी क्योंकि यह विधवा मुझे सताती है, इसलिए मैं उसका पलटा लूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि बार बार आकर मुझे परेशान कर दे। तब प्रभु ने कहा, सुनो, यह अन्यायी न्यायी क्या कहता है? और क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का पलटा ना लेगा, जो रात दिन उसे दुहाई देते रहते हैं, यद्यपि वह उनकी बहुत देर तक सहता है? मैं तुमसे कहता हूँ कि वह शीघ्र ही उनका पलटा लेगा। यहाँ चित्रित न्यायाधीश को अधिकार के प्रति कोई सम्मान नहीं था, ना ही दुख के लिए दया। विधवा ने उसके सामने अपना मामला रखा, उसे लगातार ठुकराया गया, बार बार वह उसके पास आई, केवल तिरस्कार के साथ व्यवहार किया गया और न्यायपीठ से भगा दिया गया। न्यायाधीश जानता था कि उसका मामला न्यायसंगत था और वह उसे तुरंत मुक्त कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह अपनी मनमानी शक्ति दिखाना चाहता था और उसे व्यर्थ में पूछने, विनती करने और विनती करने देने में उसे खुशी हुई, लेकिन वह ना तो हारी और ना ही निराश हुई। उसकी उदासीनता और कठोरता के बावजूद उसने तब तक अपनी याचिका पर जोर दिया जब तक कि न्यायाधीश ने उसके मामले में सुनवाई करने की सहमति नहीं दे दी। उसने कहा, हालांकि मैं ईश्वर से नहीं डरता, ना ही मनुष्य की परवाह करता हूँ, फिर भी क्योंकि यह विधवा मुझे परेशान करती है, इसलिए मैं उसका बदला लूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह बार बार आकर मुझे परेशान कर दे। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने पक्षपातपूर्ण एक तरफा फैसले को प्रचारित होने से बचाने के लिए उसने दृढ़ निश्चयी महिला का बदला लिया। और प्रभु ने कहा, सुनो, अन्यायी न्यायाधीश क्या कहता है? और क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का बदला ना लेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, यद्यपि वह उनकी बहुत देर तक सहता है? मैं तुमसे कहता हूँ कि वह शीघ्र ही उनका बदला लेगा। मसीह यहाँ अन्यायी न्यायाधीश और परमेश्वर के बीच एक तीव्र अंतर दर्शाते हैं। न्यायाधीश ने केवल स्वार्थ के कारण विधवा के अनुरोध को स्वीकार कर लिया ताकि वह उसकी जीत से मुक्त हो सके। उसे उस पर कोई दया या करुणा महसूस नहीं हुई। उसका दुख उसके लिए कुछ भी नहीं था। परमेश्वर का उन लोगों के प्रति रवैया कितना अलग है जो उसे खोजते हैं। जरूरतमंदों और संकटग्रस्त लोगों की अपील पर वह असीम करुणा के साथ विचार करता है। न्याय के लिए न्यायाधीश से गुहार लगाने वाली महिला ने अपने पति को खो दिया था। गरीब और मित्रहीन उसके पास अपने बर्बाद हुए भाग्य को पुनः प्राप्त करने का कोई साधन नहीं था। इसी तरह पाप के कारण मनुष्य ने परमेश्वर के साथ अपना संबंध खो दिया। उसके पास खुद से मुक्ति का कोई साधन नहीं है, लेकिन मसीह में हम पिता के निकट लाए गए हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोग उसके हृदय के प्रिय हैं। वे हैं जिन्हें उसने अंधकार से बाहर निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, ताकि उसकी स्तुति प्रकट हो, ज्योतियों के रूप में दुनिया के अंधकार के बीच चमके। अन्यायी न्यायाधीश को उस विधवा में कोई विशेष रुचि नहीं थी जो उससे मुक्ति के लिए विनती कर रही थी। फिर भी उसकी दयनीय अपीलों से खुद को मुक्त करने के लिए उसने उसकी दलील सुनी और उसे उसके विरोधी से छुड़ाया। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों से असीम प्रेम करता है। उसके लिए पृथ्वी पर सबसे प्रिय वस्तु उसकी कलीसिया है, क्योंकि यहोवा का भाग उसकी प्रजा है। याकूब उसका निज भाग है। उसने उसे जंगल में और सुनसान जंगल में पाया। उसने उसे इधर उधर ले जाकर शिक्षा दी और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी रक्षा की। हम यह पाते हैं व्यवस्था विवरण 32 का 9 और 10 पद में, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, महिमा के पश्चात उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती हैं, क्योंकि जो तुम्हें छूता है वह उसकी आंख की पुतली ही को छूता है, कहता है जकरिया 2:8 में। विधवा की प्रार्थना, मेरा बदला ले, मेरे विरोधी का न्याय करो, मेरे विरोधी का, परमेश्वर के बच्चों की प्रार्थना को दर्शाती है। शैतान उनका महान विरोधी है, वह हमारे भाइयों पर आरोप लगाने वाला है, जो दिन रात परमेश्वर के सामने उन पर आरोप लगाता है। प्रकाशित वाक्य 12:10, वह लगातार गलत तरीके से पेश आने और आरोप लगाने, परमेश्वर के लोगों को धोखा देने और नष्ट करने के लिए काम कर रहा है, और यह शैतान और उसके एजेंटों की शक्ति से मुक्ति के लिए है कि इस दृष्टांत में मसीह अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाता है। जकरिया की भविष्यवाणी में शैतान के आरोप लगाने के काम और अपने लोगों के विरोधी का विरोध करने में मसीह के काम को दिखाया गया है। भविष्यवक्ता कहता है, उसने मुझे यहोशू महायाजक को प्रभु के दूत के सामने खड़ा दिखाया, और शैतान उसके दाहिने हाथ पर उसका विरोध करने के लिए खड़ा था, और प्रभु ने शैतान से कहा, हे शैतान, प्रभु तुझे डांटे, यरूशलेम को चुनने वाला प्रभु तुझे डांटे, क्या यह आग से निकाली गई अंगीठी नहीं है? अब यहोशू मैले वस्त्र पहने हुए स्वर्गदूत के सामने खड़ा था। जकरिया 3:1-3। यहाँ परमेश्वर के लोगों को एक अपराधी के रूप में परीक्षण पर दर्शाया गया है। महायाजक के रूप में यहोशू अपने लोगों के लिए आशीर्वाद की तलाश कर रहा है, जो बहुत कष्ट में है। जब वह परमेश्वर के सामने विनती कर रहा था, शैतान उसके दाहिने हाथ पर उसकी विरोधी बनकर खड़ा था, और परमेश्वर के बच्चों पर आरोप लगा रहा था और उनके मामले को यथासंभव निराशाजनक बना रहा था। वह प्रभु के सामने उनके बुरे कामों और दोषों को प्रस्तुत करता है, वह उनकी गलतियों और असफलताओं को दिखाता है, उम्मीद करता है कि वे मसीह की नजर में ऐसे चरित्र के दिखेंगे कि वह उनकी बड़ी जरूरत में उनकी कोई मदद नहीं करेगा। परमेश्वर के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में यहोशू निंदा के अधीन खड़ा है, गंदे कपड़ों में लिपटा हुआ है, अपने लोगों के पापों के बारे में जानते हुए वह निराशा से दबा हुआ है। शैतान उसकी आत्मा पर अपराध की भावना को दबा रहा है, जो उसे लगभग निराश महसूस कराता है। फिर भी वह एक याजक के रूप में खड़ा है, शैतान उसके खिलाफ खड़ा है। शैतान का काम स्वर्ग में शुरू हुआ था, क्योंकि वह एक अभियोक्ता था। मनुष्य के पतन के बाद से ही यह धरती पर उसका काम कर रहा है, और यह आगे भी यह काम जारी रखेगा। जैसे जैसे हम इस दुनिया के इतिहास के अंत के करीब पहुंचते हैं, यह एक विशेष अर्थ में उसका काम होगा। जब वह देखता है कि उसका समय कम है, तो वह धोखा देने और नष्ट करने के लिए और अधिक ईमानदारी से काम करेगा। जब वह पृथ्वी पर ऐसे लोगों को देखता है जो अपनी कमजोरी और पापी होने के बावजूद यहोवा के कानून का सम्मान करते हैं, तो वह क्रोधित होता है। वह दृढ़ निश्चयी है कि वे परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे। वह उनकी अयोग्यता से प्रसन्न होता है, और उसने हर आत्मा के लिए ऐसी योजनाएं तैयार की हैं ताकि सभी फंस जाएं और परमेश्वर से अलग हो जाएं। वह परमेश्वर और उन सभी पर आरोप लगाना और उनकी निंदा करना चाहता है जो दया और प्रेम, करुणा और क्षमा में इस दुनिया में उसके उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अपने लोगों के लिए परमेश्वर की शक्ति का हर प्रगटीकरण शैतान की शत्रुता को जगाता है। हर बार जब परमेश्वर उनके पक्ष में काम करता है, तो शैतान अपने स्वर्गदूतों के साथ मिलकर उनके विनाश को घेरने के लिए नए जोश के साथ काम करता है। वह उन सभी से ईर्ष्या करता है जो मसीह को अपनी ताकत बनाते हैं। उसका उद्देश्य बुराई को भड़काना है, और जब वह सफल हो जाता है, तो सारा दोष प्रलोभन में पड़े लोगों पर डाल देता है। वह उनके गंदे कपड़ों, उनके दोषपूर्ण चरित्र और की ओर इशारा करता है। वह उनकी कमजोरी और मूर्खता, उनके कृतघ्नता के पाप, मसीह के प्रति उनकी असमानता को प्रस्तुत करता है, जिसने उनके उद्धारक का अपमान किया है। यह सब वह उनके विनाश में अपनी इच्छा को पूरा करने के अपने अधिकार को साबित करने के लिए एक तर्क के रूप में जोर देता है। वह उनकी आत्माओं को इस विचार से डराने का प्रयास करता है कि उनका मामला निराशाजनक है, कि उनकी अशुद्धता का दाग कभी नहीं धुल सकता। वह उनके विश्वास को नष्ट करने की उम्मीद करता है ताकि वे पूरी तरह से उसके प्रलोभनों के आगे झुक जाएं और परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा से विमुख हो जाएं। प्रभु के लोग शैतान के आरोपों का जवाब खुद नहीं दे सकते। जब वे खुद को देखते हैं तो वे विनाश होने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वे ईश्वरीय अधिकता से अपील करते हैं। वे उद्धारक के गुणों की दलील देते हैं। परमेश्वर न्यायपूर्ण हो सकता है और यीशु पर विश्वास करने वाले को न्याय संगत ठहरा सकता है। रोमियो 3:26, विश्वास के साथ प्रभु के बच्चे उसे पुकारते हैं। शैतान के आरोपों को चुप कराने और उसकी चालों को नाकाम करने के लिए वे प्रार्थना करते हैं, मेरे विरोधी का न्याय करो, और क्रूस के शक्तिशाली तर्क के साथ मसीह साहसी आरोप लगाने वाले को चुप कर देता है। प्रभु ने शैतान से कहा, हे शैतान, तू प्रभु तुझे डांटे, यरूशलेम को चुनने वाला प्रभु तुझे डांटे, क्या यह आग से निकाली गई एक चिता नहीं है? जब शैतान परमेश्वर के लोगों को अंधकार से ढकना चाहता है और उन्हें बर्बाद करना चाहता है तो मसीह बीच में आ जाता है। हालांकि उन्होंने पाप किया है, मसीह ने उनके पापों का दोष अपनी आत्मा पर ले लिया है। उसने पूरी जाति को आग से निकाली चिता की तरह छीन लिया है। अपने मानवीय स्वभाव से वह मनुष्य से जुड़ा हुआ है, जबकि अपने दिव्य स्वभाव के माध्यम से वह अनंत परमेश्वर के साथ एक है। नाश हो रही आत्माओं की पहुंच में मदद लाई जाती है, विरोधी को डांटा जाता है। अब यहोशू मैले वस्त्र पहने हुए स्वर्गदूत के सामने खड़ा था और उसने उत्तर दिया और उन लोगों से कहा जो उसके सामने खड़े थे, उससे कहा उसके मैले वस्त्र उतार दो, और उससे कहा देख, मैंने तेरे अधम को दूर कर दिया है और मैं तुझे एक नया वस्त्र पहनाऊंगा। और मैंने कहा वे उसके सिर पर एक सुंदर पगड़ी रखें। इसलिए उन्होंने उसके सिर पर एक सुंदर पगड़ी रखी और उसे वस्त्र पहनाए। फिर सेनाओं के यहोवा के अधिकार से स्वर्गदूत ने परमेश्वर के लोगों के प्रतिनिधि यहोशू से एक गंभीर प्रतिज्ञा की, यदि तू मेरे मार्गों पर चलेगा और यदि तू मेरे आदेशों का पालन करेगा तो तू मेरे घर का भी न्याय करेगा और मेरे आंगन की भी रक्षा करेगा, और मैं तुझे उन लोगों के बीच चलने के लिए स्थान दूंगा जो पास खड़े हैं, यहाँ तक कि उन स्वर्गदूतों के बीच जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर हैं। जकरिया 3:3-7 में मिलता है। परमेश्वर के लोगों की कमियों के बावजूद मसीह अपने देखभाल की वस्तुओं से मुंह नहीं मोड़ता। उसके पास उनके वस्त्र बदलने की शक्ति है, उन्हें नया चरित्र देने की उसके पास ताकत है। वह उनके गंदे वस्त्रों को हटा देता है। वस्त्र वह पश्चाताप करने वाले विश्वास करने वालों को अपनी धार्मिकता का वस्त्र पहनाता है और स्वर्ग के अभिलेखों पर उनके नामों के विरुद्ध क्षमा लिखता है। वह स्वर्गीय ब्राह्मण के सामने उन्हें अपना मानता है। शैतान को उनका विरोधी, एक अभियोक्ता और धोखेबाज दिखाया गया है। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय करेगा। प्रार्थना मेरे विरोधी का न्याय करो न केवल शैतान पर लागू होती है बल्कि उन एजेंसियों पर भी लागू होती है जिन्हें वह गलत तरीके से प्रस्तुत करने, प्रलोभन देने और परमेश्वर के लोगों को नष्ट करने के लिए उकसाता है। जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का निर्णय लिया है वे अनुभव से समझेंगे कि उनके पास ऐसे विरोधी हैं जो नीचे से एक शक्ति द्वारा नियंत्रित हैं। ऐसे विरोधी हर कदम पर मसीह को घेरते हैं। कितनी लगातार और दृढ़ता से कोई भी इंसान कभी नहीं जान सकता। मसीह के शिष्य को अपने गुरु की तरह लगातार प्रलोभन पीछा करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से जुड़ा हुआ था और वह हरेक पाप को हराया, पाप पर विजय हुआ और वह आज यह शक्ति हम सबों को, अपने अनुयायियों को, अपने लोगों को देने चाहता है। पवित्र शास्त्र मसीह के दूसरे आगमन से ठीक पहले दुनिया की स्थिति का वर्णन करता है। इसी तरह अंत के समय में भी यीशु मसीह के आने से पहले उसके लोगों को अन्याय किया जाएगा। जो भी कि वह लोग सच हैं, सच्चाई में चल रहे हैं, उनको न्याय नहीं दिया जाएगा, न्याय में देरी किया जाएगा। दुनिया के लोग उन्हें दुनिया में न्याय नहीं देंगे, लेकिन परमेश्वर उनका पीछा खड़ा होगा, उनके लिए खड़ा होगा और उन्हें अंत में न्याय देगा, क्योंकि परमेश्वर महान न्यायाधीश है और अंतिम न्याय उसके पास है। आइए प्यारो भाई और बहनों, उस महान न्यायाधीश परमेश्वर पिता जो आखिरी न्याय हम लोगों को देने वाला है उसके पास आए, उस पर भरोसा करें और यह जाने कि वह हमसे प्रेम करता है, वह हमारे अच्छाई के लिए सब कुछ करेगा, हमारा भला न्याय करेगा। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे जब हम उसके पास आते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, हम सबों को तू आशीष दे, हम सबों को तू स्वीकार कर, हम तुझ पर भरोसा करते हैं पिता। हमें सच्चा न्याय तू देने वाला है और वह न्याय हमें प्रदान कर, हम तेरे रास्ता में चलने सके इसके लिए हमें शक्ति दे, तुझ पर भरोसा कर, सबों को प्यार कर।
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, Post Box 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।